श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 20 दिनांक 20 मई 2015 स्पीकर हिज ग्रेस वनवाली प्रभु
श्री चैतन्य मनो आविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पद कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्र जातम् सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भक्तवत्सल भक्त वांछा कल्पत्रु शरणागत वत्सल उन परम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी इनके परम अनुकंपा एवं मैत्री कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के नीचे उनके चरण कमलों में सेवा अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा सत्संग का यह प्रातः भागवत सत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए उन भगवान उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान का वह असीम कृपा जिन व्यक्तित्व के माध्यम से हमें बड़े सरलता एवं सुलभता से प्राप्त हो रही है वह कृष्ण भगवान कृष्ण के कृपा के मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ये गोपियों का जो कि अविवाहित कन्या है इनका कात्यानी व्रत संपूर्ण हुआ है और इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी करते हुए कह रहे हैं कि ये गोपियां जो हैं अब कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए एक और कदम ले रहे हैं। इति इस प्रकार से कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा ठीक है, आप सब ने एक महीने का ये पूरा व्रत कर लिया है आपने, पर एक गलती इस व्रत में किया। आपका ये गलती यह है कि आप अपने वस्त्र को छोड़कर पानी में आप नग्न इस प्रकार से रहने के कारण वरुण इत्यादि देवताओं के प्रति अपराध किया है। ये हमारे वैदिक संस्कृति है कि हम किसी भी समय वस्त्रहीन नहीं रहते हैं। सोते वक्त, स्नान करते वक्त, खाते पीते चलते वक्त हमेशा वस्त्र धारण करते हैं। ये वृक्ष इत्यादि, पशु, कीट इत्यादि, इनको वस्त्र लागू नहीं होता है। पर यह जो अपराध है, बड़ा घोर अपराध है, और इस अपराध के कारण आपका व्रत जो है फलीभूत नहीं होगा। तो गोपियाँ डर गए। पानी में इतने देर ठंडे पानी में रहने के कारण इनका शरीर कांप रहा था और कृष्ण हट लगाए बैठा था, वे वस्त्र दे भी नहीं रहा था और उन्हें आने के लिए कह भी रहा था। सूर्य का उदय हो रहा था, रोशनी चारों ओर फैल रही थी। गोपियां सोचने लगे अब तो एक कृष्ण ही है जिन कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी से आज इतने दिन 30 दिन तक हमने व्रत किए हैं। इस मार्चिस मास में हमने इतना व्रत किया है और कृष्ण हमारे समय है, और समय बीतते जाएगी, नदी के तट पर और पुरुष लोग आएंगे और हमारा यह हाल देखकर या इस हाल पे हमें देखेंगे तो हमारी बदनामी और बढ़ जाएगी। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, या तो कृष्ण के पास जाए या अन्य लोगों के समक्ष हम इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाए। तो सारे गोपियां एक एक करके हिम्मत करके बाहर निकलने लगे। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, अत्र अगत्य, वो कहा कि आप सब इधर इधर आओ और स्व स्व अपने अपने कपड़े लेकर चले जाओ। और कृष्ण ने ये कहा कि ठीक है कि आपने ये व्रत पूरा किया है, पर व्रत आपका फलीभूत नहीं होगा क्योंकि आपने घोर अपराध किया और ये अपराध के कारण आपको प्रणाम करना होगा। किसको? कृष्ण कहते हैं कि सारे पाप जो है वो नाश हो जाता है अगर हम नारायण को प्रणाम कर लेते हैं। नारायण को अगर हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं तो सारे पाप नाश हो जाते हैं। नारायण परम पवित्र है और नारायण के पास जाने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान पवित्र है, भगवान का नाम पवित्र है, इसलिए हम देखते हैं जहाँ पे यह धार्मिक सभ्यता होता है। हमने यहाँ तक देखा है जब कोई व्यक्ति कुछ बातें सुनते हैं जो सुनने लायक नहीं है, तो जो संस्कृति से बहुत विधि विधान का पालन करते हैं वो तुरंत कान को बंद करके विष्णु 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 ऐसे नाम लेते हैं। हाँ, दक्षिण भारत में हम देखते हैं कुछ चीज़ जिसे देखना नहीं चाहिए देख लिया है, गंदगी, मल इत्यादि को, तो तुरंत वे थूकते हैं और बोलते हैं विष्णु 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 या नारायण नारायण नारायण। ये नारायण नाम लेने से सब पवित्र हो जाता है और नारायण को प्रणाम करने से सब पाप नाश हो जाता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि मुझे प्रणाम करें। तो गोपियां कहेगी कि क्यों, आपको हम क्यों प्रणाम करें? तब वो कहते हैं कि मैं नारायण हूं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा गर्गाचार्य ने कहा, याद है आपको? और सारे ब्रजवासियों को भी याद है, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब गर्गाचार्य उनके घर आए थे, और गर्गाचार्य ने जब नामकरण रखा कृष्ण और बलराम का, तब कृष्ण लगभग 80 दिन के हो गए थे, 80 या 90 दिन के भी हो गए, 108 दिन से ज़्यादा हो गया था। उस दिन गर्गाचार्य का आगमन हुआ था, तब नंद महाराज अति प्रसन्न हुए और कहे, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आप जैसे महान संत हमारे घर में आए हैं, आप कृपा करके आइए और हमारे घर को पवित्र कीजिए। इस प्रकार से उन्हें देखकर वे हर्ष उल्लास का कोई सीमा नहीं रहा, और वो कहे, महाद्विचलानम निर्नाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयस्य भगवान कल्पते न अन्यता कचेत। आप जैसे महान भक्त भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ से वहाँ विचरण करते हो केवल दीन चेतसाम गृहिणी गृहिणाम, ऐसे दीन या निकृष्ट चेत वाले गृहस्थों के घर में जाते हैं और उनका उद्धार केवल उद्धार करने हेतु जाते हैं, और कोई आपके अंदर इच्छा नहीं होता, निःश्रेयस्य भगवान, आपके हृदय में इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। आप आए, हमारा भाग्य का उदय हो गया है, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, आप कृपा करके विराजमान होइए, पाद प्रक्षालन का इत्यादि करते हैं और बहुत अनवय विनमय करते हैं कि कृपा करके, कृपा करके, आज आप आ ही गए हैं तो ये दो बालक हैं, इनका नामकरण कर लो। कंस के दर्द से आज तक मैंने उनका नामकरण नहीं किया। तो गर्गाचार्य कहते, मैं भी कंस से डरता हूँ, अगर कंस यहाँ पे नामकरण कर ले, पूरा ब्रज इकट्ठा हो जाए तो पता लग जाएगा ये बालक गर्गाचार्य द्वारा क्यों नाम इनका करण हुआ है, जरूर वसुदेव का पुत्र होगा। तो फिर तो नंद महाराज कहते हैं, इस बात का, इस समस्या का समाधान हम करेंगे, हम ऐसा करते हैं, चुप से दोनों बालकों को हम गौशाला लेकर जाएंगे, और दूर गौशाला में आप, हम जाएंगे वहाँ यज्ञ कुंड इत्यादि करके आप यज्ञ कीजिए, दोनों बालकों का आप नामकरण वहाँ पे कीजिए, हम किसी को बुलाएंगे नहीं, कोई आएंगे नहीं, केवल ये दो बालक और हम और उनके माता जरूर आएंगे। तो गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। वैसे तो गर्गाचार्य आए था नामकरण के लिए, पर फिर भी देख रहा था क्या होना चाहिए। तब ये दो माताएं जो थी, रोहिणी माता और यशोदा मैया, ये दोनों आपस में बात करने लगे, अहो भाग्य, अहो भाग्य, क्या भाग्य है हम सबका, आज हमारे घर महान संत आए हैं, आचार्य आए हैं, गर्गाचार्य आए हैं, ये यदुकुल के ये बड़े गुरु, हमारे कुल गुरु माने जाते हैं, तो इनका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए हैं। तो यशोदा मैया रोहिणी माता से कहती है, अरे मैंने सुना बहुत बड़ा पंडित है, ज्योतिष जानते हैं, वे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ओहो बहुत अच्छी बात है, और उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं हम। तो बोलते दोनों चलते चलते दोनों गोपियां क्या करते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को अपने गोद में लिए रखे हैं और बलराम जी को रोहिणी माता उठा के रखे हैं अपने गोद में। वो कहते हैं कि अरे हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं हमारे गुरु गर्गाचार्य कितने बड़े पंडित हैं, ऐसा करते हैं कि कृष्ण को, रोहिणी से कहा, कृष्ण को आप आप उठा लेना और बलराम जी को मैं उठाऊंगी, अब देखते हैं हमारे गुरु कितने पक्के हैं। जरूर अगर इस प्रकार से देखिए ये गोपियाँ कितने बड़े होने पर भी, अब यशोदा मैया का उम्र लगभग 80 के निकट है, फिर भी कितने चंचल और इस प्रकार के भाव है इनका, है ना, इतना नटखट भाव है। तो जिस माँ का, जो माँ इतना नटखट होगी तो उनका बालक जरूर नटखट होगा, है ना। तो वो कहे कि चलो हम परीक्षा लेते हैं अपने गुरु का। वैसे गुरु का परीक्षा कभी लेना नहीं चाहिए, गुरु गुरु होते हैं, गुरु का कभी परीक्षा नहीं, पर इनमें ऐसा भाव आ गया था और दोनों गोपियाँ गए और बलराम जी को अपने गोद में लिए और देखते हैं जरूर रोहिणी के एक गोद में कृष्ण को देखकर वो रोहिणी के पुत्र कृष्ण को रोहिणी का पुत्र समझेगा, और बलराम जी को मेरे गोद में देखकर यशोदा का नंदन समझेगा। चलो इस प्रकार से दोनों घूंघट और अच्छी तरह से डाल के वो यज्ञ के कुंड के सामने खड़े हो गए और समय आ गया जब नामकरण करने का। तब वे स्वाहा स्वाहा करते करते अब कहा कि चलो इनका नामकरण हम करते हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों माताएं वहां पे खड़ी थी, अब गर्गाचार्य को नामकरण करना था कृष्ण और बलराम का इस गौशाला में, तब वे रोहिणी के यशोदा मैया की ओर देखते हैं और अपने हाथ को उस दिशा पर रखकर वे बलराम जी की ओर इस प्रकार से दिखाकर वो कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो। जैसे ही कहा अयम ही नो रोहिणी पुत्रो, यशोदा मैया बहुत शर्माने लग गई और कहा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। ये सच में पंडित है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृद गुने। और वे अपने जितने भी अपने सुहृद है उन सबको आनंद दिलाएंगे, इसलिए अक्षयते राम इति, इसलिए इसका नाम राम होगा। बल अधिक बलम विदो, इसके पास अधिक बल है इसलिए यदु नाम अप्रित भवत। तो इस प्रकार से बलराम जी का नामकरण करने के बाद कृष्ण का नामकरण करने जाएंगे। जब कृष्ण का नामकरण करते हैं उस वक्त की घटना सब ब्रजवासी को पता है। तब गर्गाचार्य तो गर्गाचार्य है, वो तुरंत कृष्ण को देख के भाव विभोर होकर रोहिणी के गोद में कृष्ण को देखकर भाव विभोर होकर कहने लगा, ये तो कृष्ण है, ये तो सतयुग में श्वेत रंग का था, त्रेता में लाल, और कलयुग में पीला रंग में आएगा, और इस द्वापर में काले रंग में आए हैं। और इस प्रकार से भाव विभोर होकर कहने लगा, अनेक अनेक कारणों के कारण है आपका ये बहुत ही सुंदर बालक जो है वह कुछ समय पहले पुरातन समय पर वसुदेव का पुत्र था। तो नंद महाराज सोचा होगा, हाँ हो सकता है 2-3 जन्म पहले वो वसुदेव का पुत्र होगा। वास्तव में गर्गाचार्य क्या कह रहा है कि ये वसुदेव का पुत्र है, पुरातन समय में कुछ समय पहले वसुदेव का पुत्र था, अर्थात वो कह रहा है स्पष्ट गर्गाचार्य कि ये आपका पुत्र नहीं वसुदेव का पुत्र है। बहुनी संति नामानी, फिर कहते हैं कि आपका जो बेटा है उसके अनेक अनेक नाम हुए, उसके अनेक अनेक रूप हुए, उनके अनेक अनेक गुण है, और प्राय लोग उन गुणों को नहीं जानते हैं। अब कृष्ण जो है वहां पे रोहिणी माता के गोद में है और गर्गाचार्य के उधर और गुर गुर के देख रहे हैं, और गर्गाचार्य अभी सोच रहे हैं, अरे ये कृष्ण का मैं गुणगान कर रहा हूं और ये कृष्ण इतने गुर गुर के देख क्यों रहा है। पर कृष्ण के मन में क्या डर है, कृष्ण के मन में ये डर है गर्गाचार्य अगर पोल खोल देगा कि ये बालक ही भगवान है नारायण है तो सारा ड्रामा आज तक जो हुआ है वो सब में पानी फेर जाएगा। फिर गर्गाचार्य देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो कहने लगा एष वः श्रेय आदायस्त, वो कहते कि ये पूरे ब्रजवासियों का ये जो बालक है यहाँ हमारे नजदीक खड़ा है, गोप गोपाल नंद नंदना, ये जो है सारे ब्रजवासियों का आनंद दिलाएगा और बड़े बड़े खतरे से आप सबको बचाएगा। पुरानी न ब्रजपते साधवो दास्यो पीड़ित, आप सबको बड़े पुरातन समय में जब जब इंद्र, अब बोला कि इंद्र जब जब खतरे में था तब तब ये आकर हम देवताओं का रक्षा किया है और ठग और चोरों को भगा दिया था। यानी कि लगभग वो ये श्लोक कह रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस प्रकार से जैसे ही कह रहा था, अब कृष्ण को बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत ही गुस्से में आ गया और कहने लगा कि जब जब इस प्रकार असुरों का बल बढ़ जाता है तब तब आपका बेटा जो है इंद्र के दुश्मनों को मारा था। दशमान नंद आत्म जो अयम ते, अब हाथ बता के बता रहे, ये जो आपका नंद आत्म आपका जो पुत्र है, तब जैसे ही बोला भाई आपका जो पुत्र है नारायण, जैसे ही कहा नारायण तो कृष्ण इतने गुस्से हो गए, उनके आंख अब लाल लाल होने लग गए, बड़े बड़े आंखों से देखने लगे कृष्ण। तब गर्गाचार्य चुप हो गया, अब आंखों ही आंखों में इशारा होने लग गया, बोला इतना गुड़ गुड़ के देख क्यों रहा है, बोला कि तुम्हें इधर आने के लिए किसने कहा। कृष्ण बोला ये तो आपके पिताजी वसुदेव ने कहा कि नामकरण करना है, वो तो ठीक है तो नामकरण करके जाओ, पर क्या यहाँ पे मैं ड्रामा कर रहा हूँ एक छोटा बालक का, अगर ये बताओगे कि मैं नारायण हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो गर्गाचार्य है वो कहा कि बस यही बात है, हम ब्राह्मण हैं, बात को बदलने में हमें समय नहीं लगता है। तो कहा कि तस्मानंद आत्मा जो अयम ते नारायण, तो और गुस्से से देखा नारायण समो गुने, तो क्या कहा नारायण जैसा सम, नारायण जैसे इनका गुण है। तब कृष्ण ठंडे हो गए। गर्गाचार्य भी बोला ठीक है, आपका बेटा जो है नारायण जैसा है, नारायण नहीं है। तो कृष्ण बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तो याद करो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं नारायण समा हूं, आपने जो अपराध किया है पानी में इस प्रकार से वस्त्रविहीन रहने का, इस अपराध के कारण आपका जो एक महीने का व्रत वो फलीभूत नहीं होगा, और इस अपराध से बचना है तो नारायण के समक्ष आओ और अपने अपराध का क्षमा करो। तब कहा कि ठीक है, देखा समय बहुत बीतता जा रहा है और वैसे भी कृष्ण को ही हम चाहते थे, तो एक एक करके सारे गोपियां निकलने लगे। तो गोपियां जैसे जैसे निकलने लगे तो कृष्ण ने कहा कि आपको प्रणाम करना होगा। तो कैसे प्रणाम करें, तो वो दोनों हाथ नीचे रखे थे, तो कृष्ण ने कहा नहीं, आपको इस प्रकार से प्रणाम जो है ये स्वीकार हम करते नहीं हैं, ये प्रणाम पूरा नहीं है। तो बोलते हैं कि दोनों हाथ आप सर के ऊपर रख के इस प्रकार से प्रणाम करो तो आपका प्रणाम पूरा होगा, तब जाके आपका अपराध क्षमा होगा। तो इस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण के सारे बातों को सुने और इस प्रकार से वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वोच्च जो है त्यागने के लिए तैयार हो गया। स्त्रियों के लिए जो कुल वधु स्त्री है, जो अच्छे घर के स्त्रियां हैं, उनके लिए लाज लज्जा एक आभूषण है, तो उस आभूषण को भी त्याग कर कृष्ण के लिए सर्वोच्च देने के लिए वे प्रदर्शित करते हैं कि कृष्ण के लिए हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। हाँ, शर्त यह है कि हमारे कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जब रासलीला में का रासलीला के लिए कृष्ण सबको सभी गोपियों को बुलाए थे, तो सारे गोपियां दौड़ते दौड़ते आए तो कृष्ण उन गोपियों को देख के हंसने लगे, तो गोपियां एक दूसरे को देखने लगे। वो कैसे आए थे, आंखों का काजल वो मुंह के ओर लगाए और ऊपर का वस्त्र जो है नीचे लगाए और नीचे के वस्त्र ऊपर डाल के आए। इस प्रकार से कृष्ण इन सब को देखकर, हाथों का कंगन जो पांव में लगाया, पांव का पायल जो हाथ में लगाया, इसको देखकर कृष्ण हंसने लगे, सारे गोपियां बोले अगर कृष्ण हमें इस प्रकार से देखकर खुश होते हैं तो हम इस प्रकार से रहने के लिए तैयार है। कृष्ण को जो जो संतुष्टि दिलाएगा वो हम करने के लिए तैयार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में गाते हैं, आश्लिष्य वा पादरथम पिनष्टुमाम। तो चाहे कृष्ण हमें ताड़ना करे, मारे या लात मारे या हमें स्वीकार करे, अगर लात कृष्ण हमें ताड़ कर लात मार के प्रसन्न होते हैं, हम वो लात और ताड़ना वो खाने के लिए तैयार है। अगर कृष्ण के नज़दीक जाने से कृष्ण की प्रशंसा प्रसन्न होते हैं तो हम कृष्ण के नज़दीक जाएंगे। तो आखिर में गोपियाँ यहाँ पे बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए नहीं निकले कि वरुण के अपराध से डर था उनको, उनको ये था कि अगर कृष्ण इसमें प्रसन्न है तो हम कृष्ण के समक्ष इसी प्रकार प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से कृष्ण इन गोपियों का परीक्षा किए और इन गोपियाँ ने इस परीक्षा में पास हो गए हैं और अपने और कृष्ण प्रसन्न होकर आगे जाके उनको आशीर्वाद देते हैं। और इस लीला के ऊपर यहाँ पे इस तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण कोई कामुक व्यक्ति नहीं है, और कृष्ण कोई कामुक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण दिव्य स्तर पर है, भगवान है, और कृष्ण इन गोपियों को भोग करने के लिए नहीं, इनके प्रेम से आकर्षित होकर इनके इच्छा पूर्ण करने आए थे। इनका इच्छा था कि कृष्ण उनके पति रूप में आए और गंधर्व विवाह करे। तो इस प्रकार से कृष्ण ने इन गोपियों का वस्त्र वापस करते हैं। यहाँ तक जब हुआ तो इस प्रकार का लीला जो है केवल कृष्ण कर सकते हैं। यहाँ पे सावधान किया जा रहा है, कृष्ण का नकल हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान राम का कुछ कुछ लीला जो है, भगवान राम का हम नकल कर सकते हैं, कुछ कुछ लीला नकल करते हैं, कृष्ण का लीला नकल करने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए है, इसका चिंतन केवल करें। हाँ, कोई अगर कृष्ण का लीला अगर नकल करने जाए तो उसके लिए बहुत ही घातक होगा। हाँ, जैसे शिव जी का अगर कोई नकल करने जाए जहर पीने का, तो जहर अगर थोड़ा सा पिएगा, शिव जी तो जहर पिएंगे, पर राम नाम लेने के कारण, उनके कंठ में राम नाम निरंतर होने के कारण जहर जो है वो भी पवित्र हो जाता है। पर कोई अगर कृष्ण का ये लीलाओं को अगर नकल करने जाए तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। कृष्ण के लीला जो है चिंतन करने के लिए है, बाकी राम का लीला वो नकल करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का लीला नकल करने के लिए, कृष्ण का लीला चिंतन करने के लिए। अगर कृष्ण का लीला चिंतन करते रहें हमारे सारे चिंता दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ, एकाध प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस लीला का चिंतन करें, कोई नकल ना करें।